नमस्कार।
हाँ।
आज हम एक बहुत ही दिलचस्प संकलन पर बात कर रहे हैं।
हाँ।
पुस्तक का नाम है युग ऋषि की वेदना एवं उमंगे, जाने तदनुसार कुछ करें।
जी,
ये असल में कोई एक किताब नहीं बल्कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिन्हें हम सब युग ऋषि कहते हैं, उनके लेखों का संग्रह है।
बिल्कुल, 1962 से 1990 तक अखंड ज्योति में जो छपे थे।
हाँ वही। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन लेखों से युग ऋषि के मन को समझें, उनकी उम्मीदें, उनकी पीड़ा,
खासकर उनके अनुयायियों और उनके बड़े सपने युग निर्माण मिशन को लेकर।
तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है।
और ये संकलन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सीधे तौर पर दिखाता है एक मार्गदर्शक और उनके अनुयायियों के बीच का रिश्ता कैसा था। ये लेख सिर्फ भावनाएं नहीं बताते, ये एक तरह से कह सकते हैं आईना है।
आईना किस तरह का?
अनुयायियों को उनकी बताई राह पर चलने की प्रेरणा देने के लिए, उनकी पीड़ा समझने, अपनी गलतियां सुधारने और उनके सपनों को पूरा करने के लिए।
अच्छा, मतलब ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है।
हाँ बिल्कुल, गुजरे वक्त की बातें आज भी हमें बहुत कुछ सिखा सकती हैं।
तो सबसे पहले उनकी उमंग पर आते हैं। उनकी सबसे बड़ी इच्छा क्या थी? क्या वो सिर्फ पूजा पाठ करने वाले लोग चाहते थे, कर्मकांड करने वाले?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। श्रोत बहुत साफ बताते हैं कि वो चोखे व्यक्ति चाहते थे।
चोखे व्यक्ति मतलब
खरे लोग, प्रमाणिक, ऐसे लोग जो खुद पर काम करें, आत्मनिर्माण पर,
और समाज सेवा को भी महत्व दें, लोक निर्माण।
बिल्कुल, और सबसे जरूरी उनके विचारों से जुड़े, सिर्फ चमत्कार या निजी फायदे के लिए नहीं।
हाँ, उन्होंने कहा भी है कि लोग हमारे शरीर से नहीं विचारों से प्रेम करें।
उत्कृष्ट मानव निर्माण करके भारतीय समाज को देव समाज के रूप में परिणत करने के हमारे उद्देश्य को पूरा करें।
ये तो वाकई बहुत ऊंचा आदर्श है।
हाँ, और यहीं से उनकी सोच पता चलती है। उनके लिए क्रांति का मतलब था चरित्र का निर्माण, सिर्फ भीड़ बढ़ाना नहीं,
गुणवत्ता मात्रा से ज्यादा जरूरी थी।
सही कहा। और देखिए, यहीं पर हमें उनकी वेदना, उनकी पीड़ा का कारण भी मिलता है।
कैसे?
उन्होंने कई बार ये महसूस किया कि अनुयायी वो मुश्किल रास्ता छोड़ रहे हैं, आत्म सुधार और समाज सेवा का,
और आसान रास्तों की तरफ जा रहे हैं, जैसे चमत्कार की उम्मीद।
हाँ, या फिर छोटे मोटे निजी लाभ। श्रोत में तो लिखा है चमत्कारवादी निकले।
ओह, ये पढ़कर सच में लगता है कि उन्हें कितना दुख होता होगा।
बिल्कुल, जब वो देखते थे कि जिन लोगों में इतनी क्षमता है, वो भी दुनिया की छोटी इच्छाओं में फंस रहे हैं।
श्रोत में जिन्हें वासना और तृष्णा कहा गया है।
हाँ, और अपना असली मकसद भूल रहे हैं। जैसे लिखा है, उन्हें पीड़ा होती थी ये देखकर कि लोग नर पशुओं की तरह वासना और तृष्णा में लिप्त होकर शोक संताप की जलन में जल रहे हैं।
ये शब्द बहुत गहरे हैं, बहुत पीड़ादायक।
हाँ बिल्कुल, और ये निराशा सिर्फ इसलिए नहीं थी कि लोग बात नहीं मान रहे थे, बल्कि इसलिए कि इंसान की जो अनमोल क्षमता है वो बेकार जा रही थी। और इसी दर्द और एहसास ने उन्हें युग निर्माण की चुनौती देने पर मजबूर किया।
ये सिर्फ सोचने या बातें करने का बुलावा नहीं था, है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पुकार थी सक्रिय होने की, हिम्मत दिखाने की, त्याग करने की।
हाँ, जैसे लिखा है, त्याग बलिदान की घड़ी आए तब अपने को खोटा सिक्का सिद्ध न करने लगे।
ये बहुत बड़ी मांग थी, हिम्मत चाहिए इसके लिए।
और इसके लिए उन्होंने कैसे लोगों की जरूरत बताई? कर्मठ, जागरूक
और पूरी तरह समर्पित सृजन सैनिक, ऐसे लोग जिनका अपना व्यक्तित्व मजबूत हो, जो खुद एक मिसाल बने।
सिर्फ भीड़ नहीं चाहिए थी।
नहीं, यहीं पर संगठन के स्वरूप पर उनका जोर दिखता है। वो सिर्फ जमावड़ा नहीं, एक विचार परिवार चाहते थे।
विचार परिवार मतलब साझा आदर्शों पर टिका हुआ।
बिल्कुल, क्योंकि जैसा साफ लिखा है, जिन लोगों की दृष्टि में विचारों का कोई मूल्य या महत्व नहीं, वे किसी कार्य में देर तक कब ठहरने वाले हैं।
सही बात है।
मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ संख्या नहीं, अच्छी प्रतिभा और सच्ची निष्ठा चाहिए।
गहरी सोच, सच्ची लगन, वही असली ताकत है।
हाँ,
लेकिन इतनी चुनौतियों और वेदना के बाद भी क्या उनमें उम्मीद बची थी? उनकी उमंगे थी?
हाँ हाँ, बिल्कुल थी। और यही बात उनके व्यक्तित्व को और भी खास बनाती है।
अच्छा,
तमाम निराशाओं के बावजूद उनका एक पक्का विश्वास, एक गहरी उमंग हमेशा रही।
किस तरह का विश्वास?
उनका मानना था कि ये जो युग परिवर्तन हो रहा है, ये कोई मामूली कोशिश नहीं है, ये एक बड़ी ईश्वरीय योजना है,
जिसे वो महाकाल की इच्छा कहते थे।
हाँ, उन्हें पूरा भरोसा था कि ये होकर रहेगा, कोई रोक नहीं सकता इसे।
और उन्होंने अपने अनुयायियों को भी ये भरोसा दिलाया था, है ना?
बिल्कुल, कि अगर वो शरीर में न भी रहें तो भी काम रुकेगा नहीं, सूक्ष्म रूप से चलता रहेगा,
बल्कि और तेज होगा। उन्होंने कहा, ये आंदोलन न तो शिथिल होने वाला है न निरस्त, हजार लाख गुना विकसित होगा।
हाँ, ये विश्वास ही अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है।
तो कुल मिलाकर ये संकलन क्या दिखाता है?
देखा जाए तो ये एक महान दृष्टा की ऊंची आकांक्षाओं और उन्हें हकीकत बनाने की चुनौतियों के बीच का एक तरह का द्वंद्व दिखाता है।
हाँ।
कैसे बड़े सपने देखने वाले को अपनों की ही कमियों से जूझना पड़ता है।
बिल्कुल।
पर इसका मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है,
बल्कि
अनुयायियों को अंदर झांकने के लिए प्रेरित करना। जैसा शीर्षक है, वेदना समझें, भूल सुधारें।
हाँ, खुद का निरीक्षण करें।
बिल्कुल, अपने अंदर झांकने का एक निमंत्रण है ये।
और अंत में ये हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है।
क्या?
कि हम जीवन को देखते कैसे हैं?
क्या
यह सिर्फ हमारी अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए है,
या फिर हमारी कुछ बड़ी जिम्मेदारियां भी हैं समाज के प्रति, दुनिया के प्रति,
जिनके लिए हमें कुछ करना होगा?
हाँ,
जैसा स्रोत में कहा गया है, हमें चुनना पड़ेगा।
हाँ।
अगले दिनों हमें इनमें से किसी एक वर्ग में सम्मिलित होना होगा, बीच में नहीं रहा जा सकता।
ये सवाल आज भी उतना ही, शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी है।
सच में सोचने वाली बात।